सभी भाई और बहनों, नमो बुद्धाय, जय भीम। सो वी आर प्लंजिंग इनटू द धम्मा।
तो अभी हम धम्म में गोता लगा रहे
हैं। द धम्मा इज लाइक अ ग्रेट ओशन।
धम्म एक तरह से महासागर जैसा है।
एंड वी आर स्विमिंग इन द ओशन ऑफ द धम्मा।
और हम धम्म के सागर में तैर रहे हैं।
And that ocean is an ocean of happiness, of joy for all beings.
और ये जो सागर है, ये सभी प्राणियों के लिए एक सुख का सागर है।
So we've been looking at the way in which Baba Sahib understood the Buddha Dhamma.
तो बाबा साहब बुद्ध धम्म को कैसा समझते हैं?
We've been looking at why Baba Sahib came to the Buddha Dhamma.
हम लोग इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब बुद्ध धम्म की तरफ कैसे आए।
We've been looking at the way in which Baba Sahib saw the Buddha Dhamma.
तो बाबा साहब ने बुद्ध धम्म को कैसा समझा, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे।
We've seen why he came to the Buddha Dhamma.
हमने देखा कि वे बुद्ध धम्म की तरफ क्यों आए।
He saw the Buddha Dhamma as the best way to bring liberty, equality and fraternity to India.
उन्होंने भारत में समता, स्वतंत्रता और बंधुता लाने का एक सबसे अच्छा तरीका करके बुद्ध धम्म की तरफ देखा।
And we saw why he chose the Buddha Dhamma.
और हमने देखा कि उन्होंने बुद्ध धम्म क्यों चुना।
And we've especially been looking at the Buddha Dhamma as the way to train the mind for freedom.
तो हमने खास करके देखा है कि बुद्ध धम्म मन को स्वतंत्रता के लिए प्रशिक्षित करने का एक प्रशिक्षण है।
Baba Sahib said, "There's no freedom unless the mind is trained for freedom."
बाबा साहब कहते हैं कि तब तक स्वतंत्रता नहीं आती जब तक अपना मन स्वतंत्रता के लिए प्रशिक्षित नहीं होता।
So we need to train ourselves.
इसलिए हमें स्वयं को प्रशिक्षित करना जरूरी है।
This is not something easy.
और ये कोई आसान बात नहीं है।
It's not something quick.
ये कोई तुरंत होने वाली बात भी नहीं है।
There has to be a lot of work to train yourself for freedom.
यहाँ अपने आप को स्वतंत्रता के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं प्रशिक्षण देने के लिए।
And the whole of India needs to undertake this training.
और पूरे भारत में ऐसा प्रशिक्षण सभी का होना चाहिए।
We need to be helping people to train themselves for freedom.
स्वतंत्रता के लिए हमने लोगों को मदद करनी चाहिए ताकि उनका प्रशिक्षण हो।
And freedom especially means freedom from caste.
और ये स्वतंत्रता खास करके जाति से स्वतंत्रता।
Because in India, caste is the main barrier to liberty, equality and fraternity.
क्योंकि भारत में समता, स्वतंत्रता और बंधुता के लिए जाति ही मुख्य बाधा है।
So yes, we're looking at that training.
तो इस प्रशिक्षण के तरफ हम देख रहे हैं।
We've seen the basis of that training.
और हमने इस ट्रेनिंग का जो आधार है उसको देखा है।
We've seen that that training is using the laws of the mind.
और हमने देखा है कि मन का नियम जो है उसका उपयोग करके हम ये प्रशिक्षण देते हैं।
We've seen that everything in this life obeys laws.
हमने ये देखा है कि दुनिया की हर बात जो है उसका अपना नियम होता है।
There's nothing that can break those laws.
और वो नियम को कोई भी तोड़ नहीं सकता।
So we're using the laws of the mind to develop the mind for freedom.
और इसलिए मन के नियमों का उपयोग हम अपने मन को स्वतंत्रता के लिए प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग करते हैं।
We're using the principle of karma.
हम कर्म का जो नियम है उसका उपयोग करते हैं।
We're using the science of the mind, the law of the mind.
और हम मन का विज्ञान जो है, मन का नियम है, उसका उपयोग करते हैं।
And what we've seen especially is that skillful mind produces pleasant, positive effects.
तो हमने ये देखा कि जो कुशल मन होता है, उसका अच्छा और सुखद परिणाम मिलता है।
The skillful mind creates happiness for yourself, happiness for others.
जो कुशल मन होता है, वो हमारे स्वयं के लिए और दूसरों के लिए सुख निर्माण करता है।
The problem is we don't usually work with the mind.
लेकिन समस्या ये है कि हम अपने मन का उपयोग नहीं करते।
Our minds are dominated by superstition, by old habits, old customs.
हमारे मन जो है अंधश्रद्धाओं से, पुरानी आदतों से, रिवाजों से प्रभावित रहते हैं।
The caste mind is an irrational mind.
जाति का जो मन है ये एक तरह से अबौद्धिक मन है।
It's a stupid mind. Let's put it bluntly.
हम उसको एक मूर्खता भरा मन कह सकते हैं।
It's crazy.
ये विचित्र है.
It's believing in things that don't exist.
वो ऐसी बातों पर विश्वास रखना है जो अस्तित्व में नहीं है.
It's not a mind that sees reality.
और ये ऐसा मन नहीं है जो वास्तविकता देखता है.
It just follows old superstitions, old habits.
और ये केवल पुरानी आदतें को ही आगे लेकर जाता है.
And it produces pain for self, pain for others.
और इससे अपने स्वयं के लिए और दूसरों के लिए दुख ही निर्माण होता है.
So we need to train our minds to be casteless.
और इसलिए हमारे मन को हमने प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वह जाति विहीन हो.
Even Buddhists need to train their minds for castelessness.
बौद्धों ने भी अपने मन को जाति विहीन होने के लिए प्रयास करना चाहिए.
Because even Buddhists continue to have caste mentality.
क्योंकि बौद्धों के मन में भी जाति के संस्कार जो है होते हैं.
I tell you something that I've seen in amongst Buddhists.
बौद्धों के बीच में क्या मैंने देखा है मैं आपको बताना चाहूंगा.
Even in Nagpur, the great city of Nagpur.
अभी वो नागपुर है वो जो महान शहर है उसकी बात करो.
Please excuse me those of you who come from Nagpur.
अभी जो नागपुर से आए हैं मुझे माफ करना.
But even in Nagpur where Baba Sahib converted to the Buddha Dhamma, what do we see?
अभी नागपुर में भी जहां बाबा साहब ने धर्मांतर किया वहां पर हम क्या देखते हैं?
You see many many viharas.
बहुत सारे विहार हैं.
That's very good.
बहुत अच्छी बात है.
But then you find some of those viharas are for one upajati.
लेकिन आप देखते हैं कि उसमें से कुछ विहार कुछ विशिष्ट उपजाति के लिए ही है.
Another one for another upajati.
दूसरा जो है दूसरा दूसरे उपजाति के लिए.
Even in Vidarbha, the heartland of Baba Sahib's Dhamma revolution, this sort of mind is there.
तो बाबा साहब के धर्म क्रांति का हृदय जिसको हम कहते हैं वहां पर भी ऐसी बात आप देखते हैं.
Another thing we see.
दूसरी एक बात हम देखते हैं.
Buddhists in Maharashtra will only marry Buddhists in Maharashtra.
महाराष्ट्र के बौद्ध महाराष्ट्र के ही बौद्धों के साथ शादी करते हैं.
They won't marry another caste. They won't marry another community.
इतर अन्य जातियों के लोगों के साथ वो शादी नहीं करते.
So I think from now on, Buddhists in Karnataka should intermarry with Buddhists in Maharashtra.
तो मुझे लगता है कि आज के बाद में कर्नाटक के बौद्धों ने महाराष्ट्र के बौद्धों के साथ में शादी करनी चाहिए.
There are some very very nice girls in Maharashtra.
Maharashtra में बहुत सुंदर लड़कियां हैं.
There are some very nice girls in Karnataka.
कर्नाटक में भी सुंदर लड़कियां हैं.
There are some very good boys in Maharashtra.
अच्छे लड़के महाराष्ट्र में हैं.
Very good boys in Karnataka. Look at them.
अभी उनकी तरफ देखिए कर्नाटक में भी अच्छे लड़के हैं.
So we should have a full mixing.
तो इसे पूरा मिक्सिंग हो जाना चाहिए.
So that we get rid of this caste mind, this regional mind.
तो ये क्षेत्रीयवाद जो है जातिवाद जो है इसको हम नष्ट कर सकते हैं.
This is a very serious point.
तो ये काफी गहरा गंभीर मुद्दा है.
बाबा साहब said in the end what is caste?
बाबा साहब कहते कि अंत में जाति क्या है?
What keeps caste going?
जाति चलती क्यों है?
Another single word.
और एक शब्द में जवाब है.
शादी. Marriage.
तो शादी से ही चलती है.
It's marriage that keeps it going.
तो शादी से ही जाति चलती रहती है.
So if we really want to break caste, Baba Sahib says, we have to have intermarriage.
तो बाबा साहब कहते हैं कि सही में हमें जाति तोड़ना है तो इस तरह से अंतर जातीय जो है विवाह होने चाहिए.
So let's have lots and lots of marriages between people from Karnataka, Maharashtra, Bihar, Rajasthan and so on.
तो कर्नाटक महाराष्ट्र राजस्थान बिहार ये आपस में काफी सारी शादियां होनी चाहिए.
And then we can get rid of this caste system.
और फिर हम ये जाति व्यवस्था को तोड़ सकते हैं.
But what I'm saying is that even Buddhists who think they're free from caste carry caste in their minds.
तो मैं यही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग अपने आप को बौद्ध मानते हैं वो भी अपने दिमाग में इस जाति को लेकर चलते हैं.
We have to work much harder to train our minds for freedom.
तो इसलिए बहुत परिश्रम करने की हमें जरूरत है ताकि हमें हम स्वयं स्वतंत्र हो सके.
So the Buddha Dhamma gives us a training for the mind.
तो बुद्ध धर्म हमें मन का प्रशिक्षण देता है.
It's the mind that has to change. The Buddha Dhamma gives us the way to do that.
तो मन का परिवर्तन होना चाहिए और इसके लिए बुद्ध धर्म हमें साधन देता है.
So the Buddha Dhamma works with the laws of the mind to change the mind.
तो बुद्ध धर्म मन के नियमों का उपयोग करके मन को बदलने के लिए सहायता करता
है. It works with the laws of the mind to get rid of the caste mind and have a casteless mind.
तो मन के नियमों का उपयोग करके हम लोग एक जाति का मन से एक निर्जातीय मन के तरफ बढ़ते हैं.
It doesn't happen just by saying, मैं बौद्ध हूं.
मैं बौद्ध हूँ कहने से ही काम नहीं होता.
Because Buddha just becomes another jati.
क्योंकि बौद्ध फिर एक और जाति बन जाती है.
We have to work to change our minds, to change our attitudes.
तो हमें कार्य करना पड़ता है हमारे मन बदलने के लिए, हमारे दृष्टिकोण बदलने के लिए.
So what is this training?
तो ये प्रशिक्षण क्या है?
Well, first of all, let me say about something about how we train.
तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग प्रशिक्षित कैसे होते हैं.
Well, the first thing is that training is work.
तो सबसे पहले ये प्रशिक्षण जो है ये एक तरह से कार्य है.
It means effort.
इसका मतलब प्रयास करना.
This is one of the wonderful things about Baba Sahib.
बाबा साहब के बारे में ये बहुत ही विशेष ऐसी बात है.
He could have chosen any of the religions in the world.
दुनिया के किसी भी धर्म में वो जा सके होते.
Many other religions, they just say, believe in me and you are saved.
बहुत सारे धर्म ऐसा ही कहते हैं कि मुझ पर विश्वास रखो और तुम्हें बचा लूंगा.
You don't do anything, just believe in me.
आप कुछ मत करो, केवल मुझ पर विश्वास रखो.
Then I will take you to heaven.
मैं फिर तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा.
These are the religions that Baba Sahib refused.
और ऐसे धर्मों को बाबा साहब ने नकार दिया.
There are religions where you just go, you just bow down, you offer agarbatti, you go to heaven.
अभी ऐसे धर्म है, आप जाओ उनके सामने झुको, अगरबत्ती दो, आप स्वर्ग में चले जाओगे.
You just believe, you just say some words and you're saved.
आप विश्वास रखो, कुछ शब्द बोलो और आप बच गए.
You know, you just wait for the bus, you get on it and it takes you to heaven.
बस आप बस का इंतजार करते हो, बस आती है, चढ़ो, स्वर्ग में चले जाओ.
And there's one driver, that's a guru or whatever.
अभी वो ड्राइवर रहता है, वो गुरु होता है.
You just sit on the bus, pay your money and go to heaven.
पैसे भरो, बस में बैठो, स्वर्ग में चले जाओ.
But Baba Sahib didn't choose a religion like that.
लेकिन ऐसा धर्म बाबा साहब ने नहीं चुना.
He could have made it so easy.
बाबा साहब अपना काम बहुत आसान कर सके होते.
Oh, I'm saved.
अभी बच गया मैं.
Baba Sahib has saved me.
बाबा साहब ने हमें बचा लिया.
I just can relax.
अभी मैं आराम से बैठू.
And I will sleep my way to nirvana.
अभी निर्वाण तक पहुंचने के तक मैं अभी सो जाऊंगा.
Snore my way to heaven.
अभी खुर्राटे लेते रहूंगा जब तक स्वर्ग नहीं आएगा.
He does that. But Baba Sahib didn't do that.
लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया.
He said, "I'm giving you the most difficult religion in the world."
तो कहते हैं कि मैं आपको दुनिया के सबसे कठिन धर्म को दे रहा हूँ.
The Buddha Dharma is the most difficult religion to practice in the world.
दुनिया में सबसे कठिन धर्म है बौद्ध धर्म आचरण करने के लिए.
Because it demands work.
क्योंकि ये इसके लिए कार्य करना पड़ता है.
It doesn't say just save me, O Buddha.
यो ऐसा नहीं करने कहने से नहीं होता है कि बुद्ध मुझे बचा लो.
Here I am, I will carry on as normal. You take me to nirvana.
मैं जैसा हूँ वैसे रहूंगा, आप मुझे निर्वाण की तरफ ले जाओ.
There's no bus to nirvana.
तो निर्वाण के लिए कोई बस नहीं है.
You have to walk on your own legs.
अपने पैरों पर ही वहां तक चलना पड़ता
है. It's a question of your own personal effort.
ये आपके स्वयं के प्रयासों का सवाल है.
This training is a difficult training.
और ये प्रशिक्षण जो है ये मुश्किल प्रशिक्षण.
So this is something wonderful about Baba Sahib.
और ये बाबा साहब के बारे में बहुत ही सुंदर ऐसी बात.
Sometimes I think, what an amazing man.
कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बाबा साहब कितने विशेष थे.
When he converted 50 years ago and more, his people were so ignorant.
50 साल पहले उन्होंने जब धर्मांतर किया था तो उनके लोग बहुत ही अज्ञानी थे.
They were so poor.
वे बहुत गरीब थे.
They had nothing.
उनके पास कुछ भी नहीं था.
But Baba Sahib respected that.
लेकिन बाबा साहब ने उनका सम्मान किया.
Poor and ignorant as they were, he respected them.
जो भले ही वो गरीब थे, अज्ञानी थे, फिर भी उनका सम्मान उन्होंने किया.
He could have said, "Oh, my people, they're so stupid. I would just give them salvation."
तो वो ये कह सके होते कि बाप रे, मेरे लोग जो है कितने गरीब है, कितने अज्ञानी है, मैं उनको बचा लूंगा.
But he didn't say that.
उन्होंने ऐसा नहीं कहा.
He said, "No, my people are capable of standing up and working for themselves."
उन्होंने कहा कि मेरे लोग जो है अपने पैर पर खड़े होकर अपने ढंग से कार्य कर सकते हैं.
So he gave them the most difficult religion in the world.
और इसलिए दुनिया का सबसे कठिन धर्म उन्होंने उनको दिया.
A religion that's based on the dignity of the human being.
और ये ऐसा धर्म है जिसमें एक मनुष्य करके आत्मसम्मान भरा हुआ है.
And Baba Sahib said, "Take this religion, work."
और बाबा साहब कहते हैं कि इस धर्म को लीजिए और कार्य कीजिए.
So this training is a self training.
तो ये जो प्रशिक्षण है ये आत्म प्रशिक्षण
है. I'm giving you a talk.
मैं आपको ये प्रवचन दे रहा हूं.
But I'm not doing any work for you.
लेकिन मैं आपके लिए कोई कार्य नहीं कर रहा हूं.
My work is for myself.
मेरा कार्य है.
I'm getting more out of giving this talk than you are by listening to it.
आपको सुनकर जितना मिल रहा है उससे ज्यादा मुझे ये प्रवचन आपको देकर मिल रहा है.
I have to change myself in order to communicate with you.
आपके साथ बात करने के लिए मुझे अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ता है.
Then the work is yours.
और उसके बाद में फिर आपका काम शुरू होता है.
You can hear the Dhamma, you need to test it, you need to practice it.
तो आप जब धम्म सुनते हो तो आपको उस पर सोचना होता है, उस पर आचरण करना होता है.
So the Buddha Dhamma is a religion that you must work in.
तो बुद्ध धर्म ऐसा धर्म है जिसमें आपको कार्य करना पड़ता है.
Your work is your work on your own mind.
और आपका ये कार्य जो है अपने मन पर किया हुआ कार्य है.
But we've been doing the Maitri Vikas.
तो हम लोग मैत्री विकास करते हैं.
And you know it's not easy.
अब ये आसान नहीं है.
Sometimes you sit down and there's no desire for the welfare of your enemy.
अभी कभी कभी आप बैठते हैं और शत्रु पर आप मैत्री की भावना करने की इच्छा ही नहीं होती.
Actually you'd like your enemy to be hurt.
वास्तव में आप चाहते हो कि आपका जो शत्रु है वो उसको दुख हो.
If you're really honest, that's what you want.
अगर सही में प्रामाणिकता से आप पूछो अपने आप को यही आपकी इच्छा होती है.
You really want your enemy to suffer, of course you do.
और निश्चित ही अपना शत्रु जो है उसको दुख हो ऐसा ही हम सोचते हैं.
So you're having to change the way you think, the way you feel.
तो इसलिए जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हमें अनुभव होता है उसको हमें बदलना पड़ता है.
And that is work.
और इसको कार्य कहते हैं.
So the Buddha Dhamma, the path of training of the Buddha Dhamma is a path of work, of effort.
तो बुद्ध धम्म का प्रशिक्षण ये मार्ग जो है ये कार्य करने का मार्ग है.
Fortunately, that effort fairly quickly brings results.
अब सुदैव से ये जो प्रयास है उसका तुरंत हमें फल मिलता है.
We've been doing the Maitri Vikas twice.
अभी हम दो बार मैत्री विकास करते हैं.
But I can see already everybody's looking happier, looking brighter.
लेकिन हम देखते हैं कि अभी आप लोग बहुत ही आनंदी और एक तेजस्वी दिख रहे हैं.
So that the effort that you're making is bringing results.
तो जो प्रयास आप करते हैं उसका तुरंत फल मिलता है.
And you can see these results.
और ये फल आप देख सकते हैं.
This is one of the secrets of the Buddha Dhamma.
ये बुद्ध धर्म का एक ऐसा रहस्य है.
It doesn't say believe and you will be saved.
अब ये बुद्ध धर्म ऐसा नहीं कहता है कि ये विश्वास रखो और आप बचे जाओगे.
It says taste it on your tongue and see whether it tastes sweet.
वो कहता है कि आप अपने जुबान पर उसको रख कर देखो और देखो कि ये मीठा लगता है या नहीं.
Other religions are like being served a meal of gulab jamun.
अभी दूसरा धर्म है कहो कि वो गुलाब जामुन का खाना आपको परोसता है.
And the person, the host, the person serving you says, these gulab jamun are very sweet.
अभी जो परोसने वाला है वो आपको बोलता है कि ये गुलाब जामुन बहुत मीठा है.
So you reach out to take one.
तो आप हाथ बढ़ाते हो एक लेने के लिए.
And he said, no, don't take it, just believe me, it's sweet.
तो देखिए नहीं उसको उठाओ मत, हाथ मत लगाओ, मेरे पर विश्वास रखो कि वो मीठा है.
You said, no, but I want to taste.
आप कहते कि नहीं नहीं मुझे खाकर देखना है.
He said, no, I am the guru, believe in me, it's sweet.
तो बोलते नहीं मैं गुरु हूँ, मुझ पर विश्वास रखो कि वो मीठा है.
But the Buddha is not like that.
Buddha ऐसे नहीं है.
He says this gulab jamun is sweet.
तो कहते हैं कि ये गुलाब जामुन मीठा है.
Taste it for yourself.
आप खुद खाकर देखो.
So your effort brings a result.
तो आपके जो प्रयास है वो आपको परिणाम देते हैं.
Then the Buddha Dhamma, the training in the Buddha Dhamma is according to a method.
तो बुद्ध धर्म का जो प्रशिक्षण है ये एक पद्धति से बना हुआ है.
There's a plan, there's a scheme, there's a system.
तो एक उसकी रचना होती है, उसकी एक पद्धति होती है.
It moves forward progressively.
वो एक के बाद एक ऊपर जाने वाला होता है.
You need to apply yourself to that system thoroughly, systematically.
और इसलिए इस पद्धति में आपको एक नियोजनबद्ध रूप से आगे बढ़ाना होता है.
You can't just do a little bit of this, a little bit of that.
आप केवल इतना है, थोड़ा सा ये करो, थोड़ा सा वो करो, ऐसा नहीं करते.
It's a bit like going up a ladder.
जैसे कि सीढ़ियों के ऊपर आप चढ़ रहे हो.
You know, a ladder's got various rungs going up.
तो जैसे कि ये सीढ़ी होती है, उसकी एक-एक चरण होता है, पायरी होते हैं वो ऊपर जाने के लिए.
You can't say, well, I'm going to start at the top of the ladder.
आप नहीं बोल सकते हैं कि मैं अभी ऊपर की सीढ़ी पे एकदम पैर रखूंगा.
And then I'm going to go to this one in the middle.
और फिर मैं बीच वाले सीढ़ी पे पैर रखूंगा.
Then I'll go to the bottom.
और फिर मैं नीचे जाऊंगा.
Then I'll go to the top.
फिर एकदम से ऊपर जाओगे.
It won't work. You won't get up the ladder.
आप ऊपर नहीं जाओगे सीढ़ी से.
If you want to climb a ladder, you start at the bottom. You work your way up.
अगर आपको ऊपर जाना है तो नीचे से शुरुआत करना पड़ता है और सीढ़ी के एक एक पग पर पैर रख के ऊपर जाना पड़ता
है. And you must make sure that you've taken each step thoroughly.
और आपको ये भी विश्वास पक्का करना होता है कि हर पैर जो है आप अच्छी तरह से रख रहे हो.
If you don't put your foot properly on one step, when you take the next step, you'll fall down.
अगर पहले ही सीढ़ी पर आपने ठीक से पैर नहीं रखा, जब दूसरा पैर रखने जाओगे तो आप नीचे चले जाओगे.
So the Buddha Dhamma is systematic, progressive.
और इसलिए बुद्ध धर्म जो है वो नियोजनबद्ध है और विकास के लिए आगे बढ़ने वाला.
And you need to apply yourself to it regularly, thoroughly.
और आपको उसका उपयोग जो है नियमित रूप से और परिपूर्ण ढंग से करना होता.
It's a bit like studying for an exam.
जैसे वो परीक्षा की तैयारी करने के जैसा.
You know, if you want to learn something, you have to keep on reading it, remembering it.
अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है.
You can't just read it once and hope that you'll pass the exam.
एक बार पढ़ के आप अपेक्षा नहीं रख सकते कि परीक्षा में पास हो जाएंगे.
You need to read it again and again. You need to study regularly.
तो आपको ये बार बार पढ़ना पड़ता है और अच्छी तरह से पढ़ना पड़ता
है. Then you will achieve your results.
और फिर आपको जो फल चाहिए परीक्षा में वो मिलेगा.
So the Buddha Dhamma is systematic, progressive.
तो बुद्ध धर्म जो है ये नियोजनबद्ध है, ऊपर ऊपर चढ़ने वाला.
And it gives you a way of making an effort more and more deeply.
और गहराई से प्रयास करने के लिए ये पद्धति आपको देता है.
And the Buddha Dhamma can be talked about in many many different ways.
बुद्ध धर्म कई अलग अलग तरह से बताया जा सकता है.
But the most common way of talking about the Buddha Dhamma is in terms of four main steps.
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक सर्वसामान्य तरीका है बुद्ध धर्म के बारे में बात करने का.
First,
चार मुख्य चरण.
First of all, dana.
सबसे पहले है दान.
Then शीला.
शीला.
Then समाधि. Then प्रज्ञा.
और प्रज्ञा.
So we take these steps systematically one after the other.
तो हम एक एक करके हम इस सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हैं.
Often you hear it talked about just in terms of Shila, Samadhi, Prajna.
ज्यादातर Shila, Samadhi, Prajna इन तीन में ही बताया जाता है.
But you also hear this fourth one, Dana, added as the first step.
लेकिन ये दान जो है इसको एक पहली पायरी करके भी कभी उसको जिसमें जोड़ा जाता है.
Of course we can be practicing all these steps.
अब निश्चित ही हम ये सभी जो चरण है उसका अभ्यास कर सकते हैं.
On this retreat we're practicing dana.
इस शिविर में हम लोग दान का आचरण कर रहे हैं.
I hope we're being generous to each other.
मुझे आशा है कि आप एक दूसरे के प्रति दान भावना रखते हैं.
I hope we're being generous to the organization that's running this retreat.
जो व्यवस्थापक यहाँ शिविर चला रहे हैं उसके प्रति आप दानी हैं.
We're practicing Shila, I hope.
मैं आशा रखता हूँ कि हम लोग शीलों का आचरण कर रहे हैं.
We're practicing samadhi in meditation.
हम ध्यान साधना करते हैं, समाधि का आचरण करते हैं.
And we're listening to the Dhamma. That means we're developing prajna.
और हम धम्म को सुन रहे हैं, इसका मतलब हम प्रज्ञा का विकास कर रहे हैं.
So we're practicing all these different steps and stages.
तो हम ये सभी जो चरण है उसका आचरण कर रहे हैं.
But you can't really make the final steps firm until the earlier ones are firm.
लेकिन जब तक अपने पहले चरण पक्के नहीं होते तब तक आप अपनी जो अंतिम चरण है उसको पक्का नहीं कर सकते.
It's a bit like trying to pile boxes one on top of the other.
जैसे कि डब्बे जो है वो एक के ऊपर एक रखने की जैसी बात होती है.
If you can lift one box up.
आप एक डब्बा जो है ऊपर उठा सकते हो.
But it won't stay up until the other boxes are there.
लेकिन जब तक नीचे के डब्बे वहां पर रखे हुए नहीं है ये डब्बा ऊपर नहीं रहेगा.
Until they're firm, until they're steady, you won't be able to keep the top one firm.
जब तक नीचे रखे हुए डब्बे एकदम मजबूत खड़े नहीं है तब तक उसके ऊपर में नया डब्बा नहीं रखा जा सकता.
So you need to make dana and shila firm. So that samadhi and prajna can be firm.
तो आपको दान और शील को मजबूत करना पड़ता है ताकि आपकी प्रज्ञा समाधि मजबूत हो.
So let's start then with the most basic form of skillful action.
तो कुशल कर्म का सबसे मूलभूत रूप जो है उसको हम पहले देखेंगे.
Yes, we have to start our training in skillfulness with something very, very straightforward and simple.
तो हमारा जो कुशलता का जो प्रशिक्षण है ये बहुत ही सरल और सादी एक ऐसी बात से शुरू करते हैं.
And we begin with dana.
और हम दान से शुरुआत करते हैं.
We begin just by giving.
हम देने से शुरुआत करते हैं.
We just give. to those who need.
हम जो जिनको जरूरत है उनको देते हैं.
We give to worthy causes.
जो कुछ भी उचित कार्य है उसके लिए हम लोग दान देते हैं.
We especially give for the benefit of the Dhamma.
हम खास करके धम्म कार्य के लिए धम्म की सहायता के लिए दान करते हैं.
We give to those who are spreading the Dhamma.
और हम उनके लिए दान देते हैं जो धम्म कार्य करते हैं.
Whether they're bhikshus or lay people.
और वे भिक्षु हो गृहस्थ हो.
बाबा साहेब wanted a sort of sangha of dhamma pracharaks.
बाबा साहब चाहते थे कि धम्म प्रचारकों का संघ हो.
And he said they should be either lay people or monks.
और वो कहते हैं कि वो भिक्षु हो सकते हैं वो गृहस्थ भी हो सकते हैं.
So anybody who spreads the dhamma, we need to help them.
जो भी धम्म का प्रचार करते हैं उन्हें हमें सहायता करनी चाहिए.
Anybody who practices the dhamma really seriously, they need our help.
जो भी गंभीरता से धम्म का आचरण करना चाहते हैं उनको अपने मदद की जरूरत होती है.
So yes, we give to those who need it and who can do something good with it.
और जिनको जरूरत है और जिसका उपयोग कोई बहुत अच्छा कर सकता है उसको देना चाहिए.
You may not be able to spread the dhamma yourself.
हो सकता है कि आप स्वयं धम्म का प्रचार नहीं कर पाओगे.
But you can help those who can.
लेकिन आप उनको सहायता कर सकते हैं जो ये प्रचार कर सकते हैं.
Just the work of spreading the dhamma costs something.
अभी धम्म प्रचार का भी काम क्यों न हो उसके लिए कुछ खर्चा करना होता है.
Just to move around, to stay somewhere and so on will cost something.
प्रवास करने के लिए कहीं रहना है तो उसके लिए कुछ खर्चा होता है.
So we need to help people.
और इसलिए हमें लोगों को मदद करनी चाहिए.
Then they can work to change India.
और फिर वो लोग भारत को बदलने के लिए कोशिश कर सकते हैं.
We need to help those who are suffering.
जो लोग दुखी हैं, उनको मदद की जरूरत होती
है. There's so much suffering in India.
भारत में बहुत सारा दुख है.
There's so many people who live without proper food.
बहुत सारे लोग हैं जिनको पर्याप्त खाना नहीं मिलता.
There's so many people who don't have proper medical facilities or housing.
बहुत सारे लोग हैं जिनको ठीक से दवाई नहीं मिलती और ठीक से रहने के लिए जगह नहीं है.
In many states of India, I go out into the countryside.
बहुत सारे राज्यों में मैं गांव में जाता हूँ.
And I see in the countryside terrible suffering.
और उन गांव में मैं बहुत भयानक ऐसे दुखों को देखता हूँ.
Even here, I'm sure in Karnataka there's suffering.
और यहाँ कर्नाटक में भी काफी दुख होगा.
Many of our brothers and sisters are too poor.
हमारे बहुत सारे भाई बहन जो है वो काफी गरीब हैं.
They don't have proper education.
उनके पास अच्छी शिक्षा नहीं है.
They've not heard properly about Baba Sahib.
बाबा साहब के बारे में भी उन्होंने ठीक से नहीं सुना है.
They don't know that they can change their lives.
उनको ये विश्वास नहीं है कि वो अपना जीवन बदल सकते हैं.
So there's so much we can help do to help our suffering brothers and sisters.
तो इसलिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं उनकी दुखों को दूर करने के लिए.
So dana is where we can start.
और यहाँ हम दान से शुरुआत कर सकते हैं.
Even a bad man can give.
एक बुरा आदमी क्यों ना हो वो दे सकता है.
And that will be a good step for him.
और उसके लिए वो बहुत अच्छी शुरुआत होगी.
If you can give, then you've started the spiritual path.
अगर आप दे सकते हो तो एक तरह से धम्म मार्ग पर आपने चलना शुरू कर दिया.
Because giving is a step away from selfishness.
क्योंकि दान जो है स्वार्थ से बाहर निकलने का एक कदम है.
Giving is a step in maitri.
दान जो है मैत्री की तरफ बढ़ाया हुआ कदम.
You know what it's like when somebody gives something to you.
आपको कैसा लगता है जब कोई आपको कुछ देता है.
This is something really wonderful for foreigners coming to India.
अभी भारत में जब हम परदेशी लोग आते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा लगता है.
You know that India is famous for hospitality.
आप जानते हो कि भारत आतिथ्य के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है.
And this is something I experience again and again.
और ये मैं बार बार इस बात का अनुभव करता हूँ.
If it wasn't for this, I'd want to be born in India. If there wasn't this hospitality, I'd be born in India. Just a translation and I'll explain.
अगर ये आतिथ्य ऐसा नहीं होता तो. No, I get it.
Well, everything would want everything else about India. I want to be born here. I would like to be born in India. बोलिए.
तो मुझे भारत में जन्म लेने की इच्छा है.
But if I was born in India, I couldn't have. But if I was born in India, I couldn't be a guest in India.
लेकिन अगर मैं भारत में मेरा जन्म होता तो मैं भारत का अतिथि नहीं होता
and I wouldn't have the experience of being treated like a guest
और आपने मुझे जितना आतिथ्य दिया हुआ है आदरातिथ्य दिया हुआ है वो मुझे नहीं मिला
and it's something wonderful to come to India and be treated as a guest
और ये बहुत ही खास बात है भारत में आओ और भारत का अतिथि बन के आओ
so I wouldn't want to miss that
और इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता
so as long as you will treat me like a guest I will be reborn in India
अभी भारत में जन्म होने के बाद भी तुम मुझे गेस्ट करके ही देखोगे तो मैं भारत में जन्म लूंगा
But you know what it's like, you go to a house.
तो आप देखते हो कि आप किसी के घर जाओ
The first thing that happens, people offer you a flower.
तो सबसे पहले लोग आपको फूल देते हैं
they make you comfortable, they give you water.
वो आपको पानी देते हैं आपके लिए बहुत ही आरामदायी बैठने के लिए देते हैं
Sometimes they give you a beautiful garland.
कभी कभी बहुत अच्छा हार भी देते हैं
And then they sit you down.
और फिर वो आपको बैठने के लिए कहते हैं
And they give you so much food.
और बहुत अच्छा खाना देते हैं
I've been in villages where people have nothing.
मैं ऐसे भी गांव में गया जहां लोगों के घर में कुछ भी नहीं है
But everything they can get, they give me.
लेकिन उनको जो जो अच्छा कर सकते हैं वो मेरे लिए वो करते हैं
This is the spirit of India.
और ये भारत की ताकत है
This hospitality is something really wonderful in Indian culture.
और भारतीय संस्कृति में ये जो आदरातिथ्य है ये बहुत ही सुंदर ऐसी बात
I think this is where the Buddha Dhamma survives best in India.
मुझे लगता है कि बुद्ध धर्म यहां पर अच्छी मात्रा में आप देख सकते हैं
This aspect of Indian culture should not be changed.
और भारत का ये जो अंग है वो बदलना नहीं चाहिए
You know how to make a guest welcome.
आप ये अच्छी तरह से जानते हो कि जो मेहमान है अतिथि है उसका स्वागत कैसा करें
This is something really remarkable about Indian culture.
और ये भारत के लिए बहुत ही विशेष ऐसी बात है
You get fed so much that you can hardly stand up.
आपको इतना खिलाया जाता है कि आपको खड़ा होना भी नहीं आता है
Look at my belly. This is India.
अभी मेरे पेट की तरफ देखो ये सब इंडिया है
I carry India in my belly.
इन भारत में अपने पेट में लेके घूमता हूँ
I used to be like that. Like Shah Rukh Khan.
तो मैं पहले शाहरुख खान जैसा था पेट नहीं था
But India came to me.
लेकिन अभी इंडिया अंदर आ गई है
And I'm very grateful to India. I like my belly.
तो मैं भारत के बहुत आभारी हूँ मैं अपने पेट से बहुत प्यार करता हूँ
So yes, this tradition of hospitality is very, very strong in India.
तो ये आदरातिथ्य की बात जो है भारत में बहुत मजबूत है.
And you know what it's like when you receive that sort of hospitality.
तो आप अनुभव करते हो आपका जब कोई आदरातिथ्य करता है तो आपको कैसे लगता है?
When people treat you like that, you feel so positive.
जब लोग आपका ऐसा सम्मान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है.
You feel very strongly. Connected with the people who are giving to you.
आपको जब कोई ऐसे देता है तो उनके साथ एक अच्छा जुड़ाव आप महसूस करते हैं
You know, at the beginning of a program, you give people garlands.
आप देखते हो कि जब कार्यक्रम शुरू होता है लोगों को पुष्प दिए जाते हैं
When you're given a garland, you feel welcome. You feel connected with the people who give it.
जब आपको एक हार दिया जाता है तो जो लोग देते हैं आपको उनके द्वारा आपका स्वागत हुआ है ऐसा आपको लगता है
So दान creates community.
और इसलिए दान जो है ये समाज बनाता है
It creates बंधुत्व
वो बंधुत्व बनाता है
It creates मैत्री
वो मैत्री निर्माण करता है
So even if you can't do anything else, give.
अगर आप बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं कर सकते हो तो दो
And don't forget that Skillful action brings positive results.
अब इस बात को मत भूलो कि कुशल कर्म जो है उसका अच्छा परिणाम आता है
It's strange, if you give, you will get.
अब ये बड़ी विचित्र बात है जब आप देते हो तो आपको मिलता है
If you create friendship with others, they will be friendly to you.
अगर आप दूसरों के साथ मित्रता करते हो तो वह भी आपके साथ मित्रता करते
So the spiritual path begins very simply just with giving.
और इसलिए धम्म मार्ग जो है बहुत ही सामान्य तरीके से केवल देने से शुरू होता है
Give to those who live without anything.
जो लोग बिना किसी चीज के रहते हैं उनको दीजिए
Give to the Bhantes who just have their robes and their bowls.
उन भंते जी को दीजिए जिनके पास उनका चीवर है और भिक्षा पात्र है
They depend upon being given.
और आपके दान पर उनका जीवन चलता है
Give to those who are spreading the Dhamma in other ways.
और अन्य तरीके से जो लोग धम्म कार्य करते हैं धम्म प्रचार करते हैं उनको दीजिए
Give to those who need.
और जिनको जरूरत है उनको दीजिए
And give to your friends for friendship.
और अपने मित्रों को दीजिए अपनी मित्रता के लिए दीजिए
Even a single flower can create friendship.
एक छोटा सा फूल भी मित्रता बना सकता है
One flower petal can create friendship.
एक फूल की पंखुड़ी भी मित्रता बना सकती
है. Just somebody giving something to you makes friendship.
कोई आपको कोई छोटी सी चीज देता है तो मित्रता बन जाती है.
There's a wonderful story that Urgen Sangrakshita tells.
एक बहुत ही सुंदर कहानी उर्गेन संगरक्षित जी बताते हैं.
You know he lived up in Kalimpong in West Bengal.
आप जानते हो कि वे पश्चिम बंगाल में कालिम्पोंग में रहते थे.
And many Tibetan gurus were coming out of Tibet because of the Chinese invasion.
अभी चीनी लोगों ने आक्रमण करने की वजह से बहुत सारे तिब्बती लोग उधर आते थे.
And these were big men.
और ये बहुत बड़े बड़े लोग होते थे.
They'd been very, very highly honored in their own country.
उनके देश में उनका बहुत बड़ा सम्मान किया जाता था.
But they came out with nothing.
लेकिन ये लोग भारत में आए थे तो उनके पास कुछ नहीं था.
So one of Urgyen Sangrakshita's Tibetan teachers was called Dilgo Khyentse Rinpoche.
तो Urgyen Sangrakshita जी के एक तिब्बतन गुरु थे, उनका नाम है Dilgo Khyentse.
हाँ. And he was one of the most important teachers in India, in Tibet.
और वे तिब्बत के बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण ऐसे गुरु थे.
But he had nothing.
लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था.
So Sangrakshita got to know him well.
अभी संगरक्षित जी के साथ उनकी बहुत अच्छा परिचय हुआ.
And one day he went to see him to tell him, I'm going to England now.
तो एक दिन संगरक्षित जी Dilgo Khyentse गुरुजी के पास गए, उनको कहा कि अभी मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ ये बताने के लिए.
And so he came to say goodbye and to ask for his blessings.
और उन्होंने कहा कि मैं आपको विदाई लेने के लिए आया हूँ, आपके आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ.
And so Dilgo Khyentse Rinpoche gave him his blessings.
अभी Dilgo Khyentse Rinpoche ने उनको अपना आशीर्वाद दिया.
And then he said, "Well, I want to give you something."
लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ.
And then he looked a bit puzzled.
और फिर उनको बड़े संभ्रम में आ गए.
And he was a married lama, so he called for his wife.
तो वे विवाहित लामा थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया.
And he said to his talking to his wife in Tibetan.
अब तिब्बतन में अपनी पत्नी से वो बात करने लगे.
And she looked puzzled.
और वो भी जरा चिंतित लगी.
And then she said, "Wait."
तो उन्होंने कहा कि रुको.
She went into the kitchen.
वो अपने घर के अंदर गई, किचन में गई.
She came back with a kitchen knife.
और वो अपने किचन का एक चक्कू लेकर आई.
Just a simple Tibetan kitchen knife.
अभी तिब्बत के एक रसोई घर का एक छोटा सा साधारण एक चाकू था.
And she gave it to Dilgo Khyentse.
और वो उसने वो चाकू उन्होंने Dilgo Khyentse जी को दिया.
So Dilgo Khyentse gave it to Urgyen Sangrakshita and said, "I'm really sorry."
और Dilgo Khyentse जी ने वो संगरक्षित जी को दिया, उनका कि मुझे बहुत दुख होता है.
He said, "I'm really poor."
मैं बहुत ही गरीब हूँ.
I got nothing.
मेरे पास और कुछ नहीं है.
So this is all I can give you.
और ये मैं आपको दे सकता हूँ.
But I give it with my heart.
लेकिन मैं अपने हृदय से आपको देता हूँ.
So please accept it as in the spirit it's given.
तो मैं जिस हृदय से दे रहा हूँ उसी से आप उसको स्वीकार कीजिए.
And even today Urgyen Sangrakshita has that knife on his desk.
अभी आज भी वह चाकू Urgyen Sangrakshita जी के टेबल पर आप देखते हैं.
And every day it's there in front of him.
हर दिन वो उनके सामने होता है.
So that very, very simple, cheap knife communicated so much maitri.
तो ये बहुत ही सस्ता और साधारण एक चाकू जो है वो एक मैत्री व्यक्त करता है.
So dana is a very powerful communication.
और इसलिए दान जो है वो बहुत ही शक्तिशाली ऐसा संपर्क है.
And it doesn't matter what it is, just give.
इसलिए आप क्या देते हो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल दीजिए.
You will benefit.
आपको लाभ होगा.
Others will benefit.
दूसरों को लाभ होगा.
You will create a connection with those people to whom you give.
आप जिनको देते हो उनके साथ आपकी मैत्री, आपका संपर्क बनेगा.
So this is the first step in our training.
तो हमारे प्रशिक्षण का ये पहला चरण.
Give every day.
हर दिन दीजिए.
You can do it quite systematically.
आप बड़े नियोजनबद्ध ढंग से ये कर सकते हो.
Just every day think, let me give.
हर दिन ये सोचिए कि मुझे कुछ देना है.
There's another very famous example from one of our teachers.
हमारे गुरु के गुरु हैं, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध ऐसा उदाहरण है.
This was Dardo Rinpoche.
वे Dardo Rinpoche हैं.
He was a bhikshu.
वे भी भिक्षु थे.
And he knew he was going to die.
उनको वो जानते थे कि अभी उनका मृत्यु होने वाला है.
He just had a strong feeling that his death was near.
उनको बहुत ही ऐसे तेजी तीव्रता से लग रहा था कि उनका मृत्यु अभी करीब आ गया है.
And he didn't have any money himself.
अब उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे.
But his monastery had quite a lot of money.
लेकिन उनका जो विहार था उसमें बहुत पैसे थे.
So he just took out all the money from the monastery.
और उस विहार के उन्होंने सब पैसे लिए.
This was what he was entitled to do.
अब वो पैसे का क्या उपयोग करना चाहिए ये पूरा उन्हीं पर था.
And he just went around just giving it away.
अभी वो बस चारों तरफ निकले वो पैसा बांटते हुए.
So that when he died, there was no money.
ताकि जब उनकी मृत्यु होगी तो कुछ भी पैसा नहीं रहेगा.
So giving is a very, very powerful practice.
तो देना जो है ये बहुत ही शक्तिशाली ऐसी साधना है.
Even these great gurus like Dilgo Khyentsey and Dado, they gave.
और ये दिलगो खेंसे या दादो जैसे भी वो महान गुरु है उन्होंने भी दिया.
So give.
तो आप दीजिए.
Think of Baba Sahib.
बाबा साहब के बारे में सोचिए.
His whole life was a gift to India.
उनका सारा जीवन भारत के लिए दान था.
Baba Sahib could have been such a wealthy man.
Baba Sahib बहुत अमीर इंसान बने होते.
He could have had so much money.
उनके पास बहुत पैसा हुआ होता.
But he died penniless.
लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई उनके पास कुछ पैसा.
He was always struggling for money.
वो हमेशा पैसों के लिए उनको संघर्ष करते रहना पड़ा.
Because his life was just giving to others.
क्योंकि उनका जीवन जो है हमेशा दूसरों को देने में ही लगा रहा.
Every day he gave in one way or another.
एक या दूसरे ढंग से हर दिन उन्होंने दिया.
I'll say more about this in a little while.
अब थोड़ी देर में इसके बारे में मैं और कुछ बताऊं.
But start with giving.
लेकिन देने से आप शुरुआत कीजिए.
Whatever else you do, give.
आप बाकी और भी करते रहो लेकिन देना शुरू रखो.
You will benefit, others will benefit.
आपको लाभ होगा दूसरों को लाभ होगा.
You will really make a contribution to the new society.
और एक नए समाज को आप सही में सहयोग करोगे.
But we need to go further than giving.
लेकिन इस दान से भी हम थोड़ा आगे जाना चाहिए.
We need to practice Shila.
हमें शील का आचरण करना चाहिए.
So what is Shila?
तो शील क्या है?
Shila is performing actions that express Maitri.
शील इसका मतलब है ऐसी कृति करना जिससे मैत्री व्यक्त होती है.
शील इज अबाउट मैत्री.
शील मैत्री से संबंधित है.
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड.
इस बात को समझना बहुत महत्व की बात.
इट्स नॉट अबाउट कीपिंग रूल्स.
नियमों का पालन करना मतलब शील नहीं है.
इट्स अबाउट डेवलपिंग मैत्री.
ये मैत्री का विकास करने का संबंध है.
इफ यू अंडरस्टैंड नथिंग एल्स होल्ड दिस.
अगर आपको दूसरा कुछ भी नहीं समझता है तो इस बात को ध्यान में रखो.
बाबा साहेब हिमसेल्फ सेज दिस.
बाबा साहब स्वयं ये कहते हैं.
शील इज अबाउट मैत्री.
शील मैत्री है.
इट्स अबाउट हैविंग अ फीलिंग ऑफ कंसर्न, अ डिजायर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स.
तो ये है दूसरों के अच्छाई के लिए हमारे मन में कुछ चिंता होना.
इट्स एक्टिंग इन वेज दैट बेनिफिट अदर्स.
ये ऐसी तरह से कार्य करना है ताकि दूसरों को लाभ हो.
इट्स नॉट एक्टिंग इन वेज दैट हार्म अदर्स.
दूसरों को परेशानी हो तकलीफ हो इस तरह से कार्य नहीं करना.
Of course not just others but yourself as well.
दूसरों को तकलीफ ना हो ऐसी बात नहीं है बल्कि अपने आप को भी तकलीफ ना हो इस तरह से.
So Shila is performing actions that express Maitri.
Shila इसका मतलब ऐसा कार्य करना जिससे मैत्री व्यक्त हो.
It's not performing actions that express violence and hatred.
ऐसी कृति नहीं करना जिससे हिंसा और द्वेष फैलता है.
So we have a list of five precepts.
तो पांच शीलों की सूची आप देखते हो.
These are not rules again.
अभी फिर से ये बताना चाहूंगा कि ये नियम नहीं है.
They're a description of the way in which somebody acts who's full of Maitri.
तो ये वर्णन है कि कोई इंसान जिसमें पूरी मैत्री है वो कैसा बर्ताव करेगा.
The Buddha is full of Maitri.
बुद्ध स्वयं पूर्ण पर मैत्री से परिपूर्ण थे.
He's nothing but Maitri.
उनके पास मैत्री के सिवा और कुछ भी नहीं.
So his every action expresses Maitri.
और उनकी हर कृति जो है मैत्री को ही व्यक्त करती थी.
So he doesn't harm others.
और इसलिए वो दूसरों का हिंसा नहीं करते.
He doesn't take what is not given.
उनको जो दिया हुआ नहीं है वो दूसरों का नहीं लेते.
He doesn't commit sexual misconduct.
वो किसी तरह से लैंगिक व्याभिचार नहीं करते.
He doesn't lie.
वो कभी झूठ नहीं बोलते.
And he doesn't intoxicate himself.
और अपने आप को कोई नशापान वो नहीं करते.
So he refrains from actions that harm.
और इसलिए जो कृति दूसरों को नुकसान पहुंचाती है उससे वह अलिप्त रहते.
But he expresses actions that are full of maitri.
लेकिन वो ऐसी कृति करते हैं जो मैत्री से भरी हुई है.
He expresses actions that are full of generosity.
वो ऐसी कृति करते हैं जो पूरी दान से भरी है.
He expresses contentment.
वो संतुष्टि का अभिव्यक्ति करते हैं.
He's truthful.
वे सत्यवादी है.
And he's full of mindfulness.
और वो पूरी तरह से स्मृतिमान है.
So the Buddha is the embodiment of the precepts.
तो ये बुद्ध शील का एक नमूना है.
He doesn't have to make any effort to practice शील.
शील का पालन करने के लिए बुद्ध को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता.
शील is completely natural to him.
बुद्ध के लिए शील एक नैसर्गिक ऐसी बात.
Everything he does spontaneously, and there's no harm in it.
और जो भी वो करते हैं वो स्फूर्त रूप से करते हैं, ऐसे उनके कर्म से उनके कृति से कोई भी नुकसान किसी का नहीं होता.
Everything he does is naturally full of maitri.
जो भी वो करते हैं वो नैसर्गिक रूप से मैत्री से ही भरा होता है.
Well, brothers and sisters, we are not yet Buddhas.
तो भाई और बहनों हम अभी बुद्ध नहीं हैं.
We've got a lot of work to do.
हमें बहुत काम करना जरूरी है.
Our actions do not naturally express maitri.
हमारी कृतियां निसर्गतः मैत्री व्यक्त नहीं करती.
So we have to learn that kind of maitriful action.
और इसीलिए हमें ये सीखना होता है इस मैत्रीपूर्ण कार्य कैसा हो सके.
And the precepts are a guide to that kind of action.
और इस कृति के शील एक मार्गदर्शक है.
So we try to learn to act with maitri by putting the precepts into practice.
और इसलिए हम शीलों को आचरण करके इस मैत्री को आचरण में लाने की कोशिश करते हैं.
So let's see what that means.
तो इसका अर्थ क्या है ये हम देखेंगे.
Let's see what each of the precepts means in practice.
तो शील का आचरण करना, हर एक शील का आचरण मतलब क्या है.
So first of all we have the precept Panatipata Veeramani Sikkhapadam Samadhiyami.
तो ये पहला शील है Panatipata Veeramani Sikkhapadam Samadhiyami.
Non harm.
हिंसा नहीं करना.
This is the most basic of the precepts.
और ये सभी शीलों का एक मूलभूत शील है.
It means not doing anything that harms another living creature.
इसका मतलब ऐसी कोई कृति नहीं करना जो दूसरे जीवों की हिंसा करता.
Panatipata means not harming breathing beings.
तो पानातिपात इसका मतलब जो श्वास लेने वाले जो प्राणी है उनकी हिंसा नहीं करना.
Pana is prana.
पाना इसका मतलब है प्राण.
So we don't harm living beings.
तो हम जो जीवित प्राणी है उनकी हिंसा नहीं करते.
We in TBMSG we think that means vegetarianism.
हम TBMSG में इसका मतलब ऐसा लेते हैं कि शाकाहारी होना चाहिए.
This is not vegetarianism for reasons of ritual purity.
ये कोई पूजा अर्चा की शुद्धता चाहिए इसलिए शाकाहारी होना चाहिए ऐसी बात नहीं है.
It's nothing to do with that. It's not a ritual thing.
ये ऐसी कोई पूजा से संबंधित बात नहीं है.
That's what you know in Brahmins and so forth do.
तो ये ब्राह्मण या बाकी लोग जो है वो इस तरह से सोचते हैं.
It's magical.
जैसा कि वो कोई जादुई बात है इस तरह से.
But for us, it's a question of not hurting unnecessarily another living being.
तो हमारे लिए हम दूसरे किसी जीवों को अनावश्यक रूप से दुख नहीं पहुंचाना चाहते.
So we try to keep complete vegetarianism.
और इसलिए हम लोग पूरी तरह से शाकाहारी रहने की कोशिश करते
हैं. I became a vegetarian before I became a Buddhist.
बौद्ध बनने के पहले ही मैं शाकाहारी बना.
I became a Buddhist. I became a vegetarian because I saw what happened in a slaughterhouse.
मैं इसलिए शाकाहारी बना क्योंकि वो कत्लखाने में क्या होता है वो मैंने देखा था.
I saw how the animals suffered.
मैंने देखा कि प्राणी कितने दुख भोगते हैं.
And I didn't want to participate in that.
लेकिन उसमें मैं स्वयं शामिल नहीं होना चाहता.
And you can live a perfectly healthy, good life without eating meat.
तो आप बहुत ही अच्छा जीवन जी सकते हैं पेट की तरफ देखो मटन न खाते हुए.
I'm not weak.
मैं कमजोर नहीं हूँ.
Do you want to try? So, yes, if you live a vegetarian diet, if you follow a vegetarian diet, you can be quite healthy.
तो अगर आप शाकाहारी भोजन लेते हो तो आप बिल्कुल सशक्त रह सकते हो.
And your mind is clear.
और आपका मन भी स्पष्ट होता है.
You know that you're not harming your brothers and sisters.
आप
cows and sheep and so on.
आप जानते हो कि आप अपने भाई बहन है या गाय हो या बकरी हो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे.
There are brothers and sisters.
तो ये आप सभी ये सब आपके भाई और बहन है.
You know, way way back we had the same ancestor.
अभी बहुत सदियों पहले हमारे जो पूर्वज थे वो वही थे.
That's modern science, isn't it? That's
आधुनिक विज्ञान यही बताता है.
That's Darwin.
डार्विन ये सिखाता है.
So when you eat some mutton, you're eating your cousin.
तो अगर आप मटन खाते हो तो आपके चचेरे भाई को खा रहे हो.
Well, you wouldn't eat your human cousin.
अर्थात वो अपना मानवीय चचेरा भाई नहीं होगा.
No, you wouldn't, would you? Oh, the silence. No, you don't eat your human cousin.
नहीं, अपने मानवी चचेरे भाई को नहीं खाओगे?
No.
Please tell me, yes or no?
No.
No, sure. I'm very relieved now. yes. So you wouldn't even serve your cousin to a guest.
और अपने चचेरे भाई को आप अपने अतिथि को भी नहीं खिलाओगे?
Not even to somebody coming from England.
England से आएगा तो भी नहीं.
So why serve your poor cousin who's a sheep?
अभी वो आपका दूसरा चचेरे भाई जो है जो बकरा है उसको क्यों खिलाते हो?
So yes, we regard the first precept as meaning non-violence in every form.
तो पहला शील इसका मतलब है हर किसी रूप में अहिंसा.
I'll mention something that I think is very important.
एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो बहुत महत्व की है.
Just recently, the government of India has produced statistics showing that there's a lot of domestic violence in India.
भारत सरकार ने एक रिपोर्ट पेश किया है जिसमें घरेलू हिंसा जो है भारत में कितनी होती है उसकी संख्या दी हुई.
I read one survey published by the government that said that 40% of women in India had experienced some violence in the home.
तो मैंने ऐसा एक रिपोर्ट पढ़ा है जिसमें कहा है कि 40% महिलाएं अपने खुद के घर में हिंसा के शिकार होती हैं.
Of course, there's a few men who experience that too, but it's mainly women who suffer.
कुछ पुरुष होते हैं जिनकी घर में उनकी हिंसा होती है लेकिन सबसे ज्यादा महिलाएं.
And well, it's completely unacceptable.
और ये जो है पूरी तरह से अस्वीकारनीय है.
It's a breaking of the first precept.
ये शील का भंग करना है पहले शील का.
And if you find yourself involved in that, you need to sort it out.
अगर आप ऐसा करते हो तो आपको स्वयं इसमें बदल करना होगा.
जिंदगी मुश्किल है. बहुत मुश्किल. परिवार का जीवन बहुत मुश्किल है. That's why I've avoided it. That's why we've avoided it. Yeah.
Shall I go?
I'll ask your wife whether you can go. Yes, it's difficult married life.
तो वैवाहिक जीवन मुश्किल है.
There's a lot of tension sometimes in the family.
परिवार में बहुत सारा तनाव भी निर्माण होता है.
That's understandable.
अब ये हम समझ सकते हैं.
But one must be very, very careful that does not boil over into violence.
लेकिन हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि ये हिंसा की तरफ नहीं जाए.
If you find that is there, and if some of you will, you need to do something about it.
अगर आप देखते हैं कि ऐसा हो रहा है तो आपने इसके बारे में कुछ करना चाहिए.
I quite understand.
अब मैं इस बात को समझता हूँ.
People irritate me sometimes.
कभी कभी लोगों का मुझे भी गुस्सा आता है.
Poor Dharmashalin, who's my secretary, sometimes I get annoyed with him.
अभी बिचारे धर्मशालिन मेरा सेक्रेटरी है, बहुत गुस्सा करता हूँ कभी कभी मैं.
You have to say no.
No.
Otherwise I'll hit you, yes. But we boil over.
तो हम लोग एक तरह से गुस्सा आता है हमको.
But that should not become violence.
लेकिन ये हिंसा की तरफ नहीं जाना चाहिए.
So you need to get some help. You need some friends to help you to get out of that.
तो आपको अपने मित्रों को मदद करना चाहिए जो हिंसा इस तरह से करते हैं ताकि वो ऐसा नहीं करें.
And we need to build a new family life, a Buddhist family life.
तो इसलिए नया पारिवारिक जीवन हमने जीना चाहिए, एक बौद्ध पारिवारिक जीवन हमने जीना चाहिए.
In which there's none of that sort of violence, none of that tension.
जिसमें इस तरह का कोई भी तनाव नहीं है.
So the first precept is non-harm.
तो पहला शील है हिंसा नहीं करना.
But we emphasize it's positive.
लेकिन उसका जो सकारात्मक शील है उस पर भी हम जोर देते हैं.
मैत्री पूर्ण ज्ञान करके कर्म करके मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ. So the principle behind the first precept is Maitri.
तो पहले शील के पीछे का जो तत्व है वो मैत्री का तत्व है.
I was thinking about these precepts.
अभी इन शीलों के बारे में मैं सोच रहा था.
And I was thinking that Baba Sahib was a wonderful example of the precepts.
इन शील का बाबा साहब एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है.
If you look at his life exemplifies the precepts from beginning to end.
तो अगर उनके जीवन की तरफ आप देखेंगे तो शुरुआत से आखिरी तक इसी शील को आप उसमें देख पाओ.
Something I was thinking about the other day was the Pune Pact.
तो पुना करार जो है उसके बारे में कल मैं सोच रहा था.
Before I came here, I had to pass the Yeruda jail.
अभी यहाँ आने के पहले मुझे येरवड़ा जेल के पास से जाना पड़ा.
That was where Gandhi was in jail. Gandhi ji was in jail, and Baba Saheb came to see him.
अभी उस येरवड़ा जेल में गांधी जी थे और बाबा साहब उनको मिलने आए थे.
You all know the story. I don't have to tell you.
अभी ये कहानी आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हो.
Gandhi wanted to stop Baba Saheb giving his people their own reserved constituencies.
अभी गांधी जी रोकना चाहते थे कि बाबा साहब की वजह से उनके लोगों को जो आरक्षित क्या बोलते उसको क्षेत्र मिले थे वो रोकने के लिए.
So Gandhi went on a strike.
और इसलिए गांधी जी उपोषण के लिए बैठे.
He wouldn't eat.
अब वो उपोषण शुरू किया.
Then he said he wasn't going to eat even if he died.
अब मरूंगा फिर भी मैं ये खाना उपोषण छोड़ूंगा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा.
Baba Saheb was under enormous pressure.
अभी बाबा साहब पर बहुत बड़ा तनाव निर्माण हो गया.
What was he to do?
अब क्या करेंगे?
On him depended Gandhi's life.
उनके ऊपर अभी गांधी जी का जीवन अवलंबित था.
Personally, I regard this as a form of violence.
एक तरह से मैं इसी को हिंसा कहता हूँ.
Mr. Gandhi's non-violence was often violence.
गांधी जी की अहिंसा ज्यादातर हिंसा थी.
He forced people in that way.
इस तरह से उन्होंने लोगों पर जबरदस्ती की है.
So, but what was Baba Saheb to do?
तो बाबा साहब क्या करेंगे?
So strange. In England, Gandhi is God.
अभी ये बहुत विचित्र बात है, इंग्लैंड में गांधी जी को जैसे देवता जैसे मान.
एवरीथिंग गांधी डिड इज वंडरफुल.
वो लोग कहते हैं कि जो कुछ भी गांधी ने किया बहुत अच्छा.
They don't know the real nature of this non-violence.
अभी गांधी जी के अहिंसा की सही बात उनको नहीं पता.
They don't know about बाबा साहेब.
वो बाबा साहब के बारे में नहीं जानते.
But बाबा साहब is a terrible position.
तो बाबा साहब के ऊपर बहुत ही बड़ा प्रसंग आया था.
If he insisted on his point of view, Gandhi would die.
अगर बाबा साहब अपने मत को पकड़ के रखते तो गांधी मरेंगे.
You could say that Gandhi was his greatest enemy.
आप बोल सकते हैं कि गांधी जी उनके सबसे बड़े शत्रु थे.
But he would not even let his enemy die.
लेकिन बाबा साहब अपने शत्रु को भी मरने नहीं देना चाहते थे.
He said just out of human decency, he could not let Gandhi die.
एक मानवीय सभ्यता करके क्यों न हो, वो चाहते थे कि वो गांधी ना मरे.
Well, that was Baba Saheb.
और ये बाबा साहब.
That was real non-violence.
तो ये सही अहिंसा है.
That was true non-violence.
ये सच्ची अहिंसा है.
Not letting somebody die.
किसी को भी मरने नहीं दे.
Even at expense of yourself.
अपने खुद की कीमत भी क्यों न गिनना पड़े, दूसरों को मरने नहीं दे.
This was the man, Baba Saheb.
तो ये बाबा साहब थे.
You think also the Mahad tank satyagraha.
अभी महाड तले तालाब का सत्याग्रह आप देखो.
It got very tense.
अभी वहाँ बहुत तनाव बढ़ गया था.
But Baba Saheb held people set back and said no violence.
और लेकिन बाबा साहब ने अपने लोगों को रोक दिया और कहा कि मारेंगे नहीं हम.
On the second satyagraha, they could have forced themselves to the tank.
अभी दूसरे सत्याग्रह में वो सब तालाब की तरफ जा सके होते.
But Baba Saheb said no, we will not achieve our ends by violence.
लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, हिंसा करके हम अपने साध्य की तरफ नहीं जाएंगे.
Baba Saheb could have made India into a bloodbath.
बाबा साहब ने भारत को खून का खून से नहलाया होता.
He could have said to people, kill.
वो अपने लोगों को कहे होते कि मारो.
He could have said revolution.
वो उन्होंने इस तरह की क्रांति कही होती.
He could have gone to Marx and made a revolution.
वो मार्क्स की तरफ गए होते और वो उस तरह की क्रांति किए होते.
But he believed deeply in Maitri.
लेकिन बाबा साहब गहराई से मैत्री में विश्वास करते.
He knew his ends had to be achieved by Maitri.
और वे चाहते थे, वो जानते थे कि उनका ध्येय जो है मैत्री से ही साध्य हो सकता.
He saw that the Buddha Dhamma was the way to bring liberty, equality and fraternity to India.
और उन्होंने देखा कि बुद्ध धर्म ही भारत को समता, स्वतंत्रता और बंधुता दे सकता है.
He saw that you cannot bring good by evil.
और वो देखते थे कि आप बुराई से अच्छा नहीं बना सकते.
This was Baba Saheb's non-violence.
और ये बाबा साहब की अहिंसा थी.
Even today, because of Baba Saheb, India is not riven with violence.
आज भी बाबा साहब की वजह से भारत बहुत हिंसा की चपेट में नहीं है.
So that was true non-violence.
तो ये सच्चा अहिंसा है.
Then adinadana.
उसके बाद है adinadana.
Not taking what is not given to you.
आपको जो नहीं दिया हुआ है उसको नहीं लेना.
Well, this is fairly obvious.
और ये काफी स्वाभाविक है.
Just not stealing from others.
दूसरों से दूसरों की चोरी नहीं करना.
But there's one thing that we need to think about quite carefully.
इसके बारे में हमें बहुत सजगता से सोचना चाहिए.
We all know just how much corruption there is in Indian life.
आप ये सब जानते हो कि भारतीय जीवन में कितना भ्रष्टाचार है.
Even to get free medical treatment, you have to pay.
आपको जो मुफ्त में मिलने वाली आरोग्य सेवा है उसके लिए भी घूस देना पड़ता है.
I was trying to explain this to some friends in England.
इंग्लैंड के कुछ दोस्तों को मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ.
We have a completely free medical system.
इंग्लैंड में हमारी पूर्णतः मुफ्त ऐसी आरोग्य सेवा है.
So some people say to me, well, aren't there free clinics for poor people in India?
तो लोग पूछते हैं कि क्या भारत में लोगों के लिए ऐसे मुफ्त में दवाखाने नहीं है?
I said, yes, the government does provide some free clinics.
तो मैंने कहा कि हाँ, सरकार कुछ मुफ्त के दवाखाने देता है.
But you have to pay.
लेकिन वहाँ पर भी पैसा देना पड़ता है.
You have to pay, otherwise you won't get treatment.
वहाँ पैसे नहीं दिए तो आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलती.
So they said, but you said it was free.
तो मुझे कहते कि आपने तो कहा वो फ्री में है.
I said, yes, it's free.
तो मैंने कहा हाँ, वो तो फ्री में है.
But then you said, you have to pay.
फिर आप कहते कि नहीं, आपको पैसा देना पड़ता है.
I said, yes, you have to pay.
तो मैंने कहा हाँ, बराबर है.
It's free, but you have to pay.
फुकट है, फिर भी पैसा देना पड़ता है.
So India, there's so much of this in India.
तो इस तरह के बहुत सारी चीजें भारत में है.
Probably many of you are involved in one way or another in corruption.
आप में से बहुत सारे लोग जो है किसी न किसी ढंग से किसी न किसी भ्रष्टाचार में शामिल हो गए.
It's the system.
क्योंकि ये व्यवस्था ही ऐसी है.
But that system ruins India.
लेकिन ये व्यवस्था जो है भारत को नष्ट कर रही है.
And we have to withdraw from it.
और इससे हमें बाहर निकलना होगा.
Even if it's at some expense to ourselves.
और अपने लिए इसका कुछ अगर उसकी कीमत भी गिनना पड़ती है, फिर भी बाहर निकलना होगा.
One of our dharmacharis was a policeman.
हमारे एक धर्मचारी जो है वो पुलिस मैन थे.
And one day when he was just getting involved with our movement, he decided he was going to stop corruption.
और एक दिन जब वो त्रैलो के बौद्ध महासंघ के संपर्क में आए तो उन्होंने तय किया कि वो अभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे.
His income was immediately 33% of what it had been.
तो दूसरी महीने से उनका जो आय है, इनकम है, वो 33% हो गया.
But he said he felt clean, he felt good.
लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे स्वच्छ लगा, अच्छा लगा.
So we have to try to change India by changing the system of corruption.
तो इसलिए भारत का ये भ्रष्टाचार की व्यवस्था बदल के हमें भारत को स्वच्छ करना जरूरी.
So the positive side of this precept is मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ.
तो इस शील का जो विधायक अंग है वो ये है.
It's not enough just not to steal or take.
ये इतना ही पर्याप्त नहीं है कि दूसरे की चोरी नहीं करना.
You need to give.
आपको देना होगा.
I've said quite a lot about dana already, so I won't say more here.
तो मैंने दान के बारे में बहुत कहा है, अभी इसके बारे में अभी नहीं कहूंगा.
But I just want to mention two stories about Baba Sahib.
Baba Sahib ki do kahaniyan main aapko aur batana chahunga.
Well, first of all, I want to mention what I said yesterday.
To sabse pehle kal maine jo baat kahi wo aapko batana chahunga.
Baba Sahib was a very very powerful man in India.
Bharat mein Baba Sahib bahut hi shaktiman vyakti the.
But nobody ever accused him of stealing.
Lekin chori ka koi bhi aarop Baba Sahib par koi nahi kar sakta.
Nobody accused him of corruption.
बाबा साहब ने कोई भ्रष्टाचार किया ऐसा आरोप भारत में कोई नहीं कर सकता.
And it's the easiest accusation to make in India.
अभी भारत में किसी पर भी आरोप लगाया जा सकता है.
If you want to damage somebody, you say he's corrupt.
अगर किसी को कोई नुकसान पहुंचाना है, आप आराम से बोल सकते हो इसने भ्रष्टाचार.
Everybody will believe you.
और आप पर लोग विश्वास भी कर लेंगे.
But nobody ever made that accusation against Baba Sahib.
लेकिन बाबा साहब के बारे में ऐसा आरोप कोई नहीं कर सका.
Even his enemies did not make that accusation.
उनके विरोधी भी थे, शत्रु भी थे, वो भी ऐसा आरोप नहीं कर सके.
They knew they would just not be believed.
क्योंकि उनको मालूम था कि इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा.
Baba Sahib was so obviously incorruptible.
बाबा साहब इस तरह से पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं किए जा सकते.
But Baba Sahib was exceptionally generous.
और बाबा साहब बहुत ही बड़े पैमाने पर दानी थे.
I've already said his life was a gift to India.
मैंने पहले ही कहा कि उनका जीवन जो है भारत के लिए एक दान था.
His whole life was a gift.
उनका पूरा जीवन दान था.
If he hadn't worked so hard for his people, he would have lived a much longer, a much more wealthy life.
अगर वो इतना परिश्रम अपने लोगों के लिए नहीं करते तो और ज्यादा जीते और ज्यादा अमीर में रहते.
He wore himself out for his people.
अपने स्वयं को उन्होंने जीर्ण कर दिया अपने लोगों के लिए.
But there are many many examples of Baba Sahib's generosity.
बाबा साहब के दानशूरता के बहुत सारे उदाहरण हैं.
I've been reading Nanak Chandratu's मेमोर्स ऑफ बाबा साहेब.
नानक चंद दत्तू ने बाबा साहब की जो स्मृति लिखी है उसको मैं पढ़ रहा था.
He was his private secretary in the last years of his life.
बाबा साहब के जीवन के अंतिम काल में नानक चंद दत्तू उनके व्यक्तिगत सचिव थे.
And he tells many beautiful stories.
और नानक चंद दत्तू बहुत ही अच्छी कहानियां उनके बारे में बताते हैं.
But he tells one story that really moved me.
लेकिन वो एक कहानी बताते हैं जो मैं बहुत गदगद हो गया सुन के.
Once बाबा साहेब was staying at Rajgaha in Dadar.
Dadar में बाबा साहब राजगृह में रुके थे.
And in the middle of the night, an old woman came and knocked on the door.
आधी रात में एक बूढ़ी औरत आई और उसने उनके दरवाजे पर टक-टक किया.
And बाबा साहब himself came and opened the door.
बाबा साहब स्वयं उठे और दरवाजा उन्होंने खोला.
He's a big man, but he opened his own door.
वो बहुत बड़े इंसान थे, खुद का दरवाजा खुद खोलते थे.
Rajgriha was open to everybody.
और राजगृह किसी के लिए भी खुला था.
So बाबा साहब answered the door.
और बाबा साहब दरवाजे पर गए.
And he didn't say, "Go away, leave me alone."
और उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि चलो यहाँ से निकल जाओ.
He said, "Well, come in. What can I do for you?"
तो उन्होंने कहा कि अंदर आओ, मैं क्या कर सकता हूँ?
And she was a very old woman, very poor.
बहुत ही गरीब बुढ़िया थी.
And very badly dressed.
और उसके कपड़े भी बहुत फटे पुराने थे.
So she said to Baba Sahib, "Only you can help me, Baba."
और उन्होंने कहा कि बाबा आप ही मुझे मदद कर सकते हैं.
My husband is very, very ill.
मेरे पति जो है बहुत ही बीमार है.
I've taken him to the hospital.
मैं उसको हॉस्पिटल में लेकर गई.
But they will not receive him.
लेकिन वो उसको भर्ती नहीं कर रहे हैं.
Yes, a free hospital.
ये मुफ्त का दवाखाना.
But they wouldn't receive him.
अब उसको भर्ती नहीं करा रहे हैं.
We won't ask questions why. We all know why.
अभी हम ये सवाल नहीं पूछेंगे क्यों, हम सबको मालूम है.
So she said, "Only you can help me, Baba."
और कहती कि बाबा आप ही मुझे मदद कर सकते.
So Baba Sahib said, "Okay, I will help you."
और बाबा साहब कहने कहा ठीक है, मैं आपको मदद करूंगा.
In the middle of the night.
और ये आधी रात है.
So he got his car out.
उन्होंने अपनी कार बाहर निकाली.
And what he could have done now is he could have said to his driver, "Take this old woman with her husband to the hospital."
तो वो कर सकते होते, अपने ड्राइवर को बता सके होते कि इस बुढ़िया को लेके जाओ, उसके पति को दवाखाने में भर्ती करा दो.
And we would have been pleased with him.
और इससे भी हमें बहुत आनंद हो गया.
But that wasn't good enough for Baba Sahib.
लेकिन बाबा साहब के लिए इतना पर्याप्त नहीं था.
He went in the car himself.
वे स्वयं गाड़ी निकाल कर निकले.
He went with that old lady, got her husband, went to the hospital.
वो उस बुढ़िया को लेकर गाड़ी में, वो दवाखाने में गए.
And of course all the hospital people, they were saying, "Oh, Sahib, 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 yes, yes, yes."
अभी हॉस्पिटल के लोग साफ 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 हाँ 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 करने लगे.
And he made sure they admitted that old man.
और उन्होंने देखा कि उस बुढ़े व्यक्ति को उन्होंने भर्ती करा लिया है.
He made sure they treated him properly.
और उन्होंने ये भी निश्चित किया कि उसकी व्यवस्था अच्छी हुई.
He made sure the old lady had some food.
और उस बुढ़िया को खाने के लिए कुछ मिला है या नहीं उसको देखा.
And only when he knew that everything was all right, he went back to bed.
और जब उन्होंने पता चला कि सब कुछ अब ठीक हो गया है, तब वो घर में गए सोने.
So that's just one little story of Baba Sahib's generosity.
तो एक छोटी सी कहानी बाबा साहब के दानशूलता की.
There are many, many stories like that.
और ऐसी बहुत सारी कहानियां.
Then kame sumichachara veramani sikhapadam samadhiyami.
Abhi hai kame sumichachara veramani sikhapadam samadhiyami.
Well, first of all, this means the obvious things.
Ab isse kafi spasht aisi baat aap jante ho.
It means no adultery.
Iska matlab vyabichar nahi karna.
I don't need to explore this. We all know it.
Ab iske bare mein aur spasht karna mujhe zaruri nahi. Aap sab jante ho.
But I think there's another meaning that's quite important for modern India.
To mujhe lagta hai ki iska aur bhi ek artha hai jo Bharat mein bahut mahatva ka hai.
It's a question of good relations between men and women.
Iska matlab hai stri aur purushon ke beech mein acha sambandh.
The old India, men were there, women were there.
Jo purana Bharat tha to purush jo hai upar the, mahilaen niche.
Men were here, women were there.
पुरुष यहाँ है तो महिलाएं अंदर थी.
But that has to change.
अभी ये बदलना है.
बाबा साहेब really determined that that should change.
और बाबा साहब पूरी तरह से इससे निश्चित है कि ये बदलना चाहिए.
They wanted to see a different kind of relationship between men and women when they marry.
जब वे विवाह करते हैं तो स्त्री और पुरुष के बीच में एक अलग रिश्ता होना चाहिए.
He said to some young women once, "Don't be in a hurry to marry."
कुछ युवतियों को बाबा साहब एक बार कहते हैं कि शादी की जल्दी मत करो.
Make sure you get a good education first.
सबसे पहले निश्चित करो कि आपकी शिक्षा अच्छी हो.
When you marry, don't think of yourself as your husband's slave or his servant.
जब आप शादी करोगी तो ये मत सोचो कि आप अपने पति की नौकर हो या गुलाम हो.
Think of yourself as his friend and companion.
अपने आप के बारे में ये सोचो कि आप उसकी मित्र हो और साथी हो.
This was Baba Sahib's message for marriage in India.
और बाबा साहब का ये संदेश है भारत में शादी के लिए.
And we men especially, we need to listen to this.
अब पुरुषों ने इस संदेश को सही ढंग से सुनना चाहिए.
Actually, it's up to you, ladies.
और मुझे लगता है कि महिलाओं के बारे में महिलाओं पर ये ज्यादा निर्भर है.
Just don't be treated like that.
अपने आप को ऐसी व्यवहार मत होने दीजिए अपने आप.
Just don't be a slave, don't be a servant.
कोई नौकर मत बनिए, गुलाम मत बनिए.
There needs to be liberty, equality, fraternity in the home.
घर में समता, स्वतंत्रता और बंधुता होनी चाहिए.
You can't have liberty, equality and fraternity in society if you don't have it in the home.
समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता कहां से आएगी अगर घर में नहीं है.
You know, you see these big political figures.
आप ये बहुत बड़े बड़े राजनीतिक लोग देखते हो.
Liberty, equality, fraternity.
तो ऐसे बड़े बड़े भाषण देते हैं.
And then when they go home, well, do that. Yeah, well, well, well.
जब घर में जाते हैं तो इस तरह से करते हैं.
So there should be that sort of freedom in the house.
तो इस तरह का जो स्वतंत्रता है वो घर में होनी चाहिए.
That sort of mutual respect.
इस तरह का जो एक आपस में एक सम्मान होना चाहिए.
So yes, the positive aspect of this precept is शांति सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ. It's contentment.
तो ये है संतुष्टि.
It's not always wanting something that you can't have.
तो जो आप नहीं प्राप्त कर सकते हो उसकी इच्छा हमेशा मन में जिंदा नहीं रखना.
It's not disturbing the lives of other people.
दूसरों के जीवन को विचलित नहीं करना.
It's not ruining families.
ये दूसरे परिवार है उनको नष्ट नहीं करना.
It's being content with the situation you're in and trying to make it work positively.
तो आप जिस परिस्थिति में हो उसमें संतुष्ट रहना और उसमें सकारात्मक कार्य करते रहना.
So what about Baba Sahib?
तो बाबा साहब के बारे में क्या?
Well, he had so many opportunities when he was in Europe.
यूरोप में जब बाबा साहब थे तो इस तरह से बहुत सारे मौके बाबा साहब के पास.
But there's nothing that he did.
लेकिन बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया.
And of course, I know that he had a lot of feeling for his wife Ramabai.
उनके जो पत्नी थी रमाबाई उनके बारे में उनकी काफी मजबूत ऐसी भावना थी.
And he felt very, very sad indeed that his early life he wasn't able to give her enough.
अभी उनके पूर्व के जीवन में वो बहुत कुछ उनको नहीं दे सके इसके बारे में काफी दुख उनके मन में था.
Because he was getting his education, he was building his movement.
अब वो शिक्षा प्राप्त कर रहे थे उसके बाद में अपना आंदोलन खड़ा कर रहे थे.
And Baba Sahib at one point felt quite regret that he'd not given her more.
अभी बाबा साहब को एक बार ऐसा अपने पश्चाताप भी व्यक्त करते हैं कि अपनी पत्नी को वो जो दे सकते होते वो उन्होंने नहीं दिया.
And it wasn't that he was unkind, it wasn't that he was cruel, he just wasn't able to give her the support and financial support that she needed.
लेकिन बाबा साहब उसके बारे में क्रूर थे या निर्दयी थे ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो आर्थिक मदद होनी चाहिए जो जीने के लिए जो बहुत सारी चीजें जरूरी है वो पूरी वो उनको नहीं दे.
That was his feeling for her.
और ये उनकी भावना अपनी पत्नी के बारे में थी.
When he married again, well, he made sure that his marriage was intercaste.
अभी जब दूसरी बार उन्होंने शादी की तो उनकी शादी जो है वो अंतरजातीय थी.
He made sure that it was a casteless marriage.
और उन्होंने ये निश्चित किया कि वो एक जाति विहीन विवाह हो.
So Baba Sahib in his own life exemplified this precept.
और बाबा साहब ने अपने स्वयं के जीवन में इस शील का एक उदाहरण है.
Then the next precept is truth.
और उसका अगला जो शील है वह है सत्य.
Or not lying.
या झूठ नहीं बोलना.
Again, this is in a sense quite simple.
तो एक तरह से ये भी काफी सरल है.
But there's one way in which in India it's easy for lies to come.
लेकिन भारत में एक तरह से झूठा बोलना बहुत आसान है.
How many people are there on this retreat?
कितने लोग इस शिविर में हैं?
10,000.
10,000.
That's what you'll see somewhere. 10,000 people on the retreat.
10,000 लोग थे इस शिविर में ऐसा बोलेंगे लोग.
Actually, there's probably not as many as 1,000.
अभी शायद हजार भी होंगे कि नहीं इसकी शंका है.
It's difficult to say. Maybe about 1,000 people.
हो सकता है कि हजार होंगे.
But what we will say afterwards? Oh, there were 1,500. There were 2,000. 10,000.
लेकिन बाद में हम क्या कहेंगे कि नहीं 1,500 थे, 2,000 थे, 5,000 थे.
So we're not careful about the truth.
तो हम सत्य के बारे में इतने सजग नहीं होते.
It's very difficult always to find out the exact truth.
तो सही में सत्य क्या है ये ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है.
So we need to train ourselves in accuracy.
तो हमें स्वयं को इस तरह की निश्चिति जो है सत्यता है उसकी प्रशिक्षण देना चाहिए.
So yes, Baba Sahib was a very good example of honesty.
तो बाबा साहब प्रामाणिकता का बहुत अच्छा उदाहरण थे.
There's so much more I could say, but I need to come to an end.
लेकिन बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, मुझे अपना प्रवचन भी समाप्त करना है.
बाबा साहब never lied.
बाबा साहब ने कभी झूठ नहीं कहा.
He always fearlessly spoke the truth.
वो हमेशा निर्भयता से सत्य का उपयोग किया उन्होंने.
I was recently reading his speeches from the Constituent Assembly.
वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहब ने जो भाषण दिए मैं उनको पढ़ रहा था.
बाबा साहब roars like a lion.
लेकिन बाबा साहब वहां सिंह की जैसी गर्जना करते.
He says the truth.
वे सत्य जो है वही बताते हैं.
Even though people don't want to hear it, he says the truth.
लोग वो सुनने की इच्छा नहीं रखते, फिर भी बाबा साहब सत्य ही कहते हैं.
Then there's the fifth precept, sura meria majja pamadatana.
तो अभी ये पांचवा शील है, सुरा मेरे मज्ज पमादठाना.
That obviously is a very very important advice.
अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी सलाह है.
You ruin your life, you waste your life if you drink.
अगर आप शराब पीते हैं तो आप अपने स्वयं के जीवन को उध्वस्त करते हैं.
If you chew gutkha or smoke, well you just waste your resources.
अगर आप सिगरेट पीते हो, बीड़ी पीते हो, गुटखा खाते हो तो अपने स्वयं के जीवन को नष्ट करते हैं.
And it's a very unpleasant smell and very unpleasant sight.
तो ये बहुत ही असुखद ऐसा दर्प या गंध आती है या दिखने में भी अच्छा नहीं लगता.
And from the Buddhist point of view, the main thing is that this drink and these drugs, they cloud your mind.
तो बुद्ध विचारों के अनुसार ये जो शराब है या नशीले पदार्थ है आपके मन को धुंधला कर देते हैं.
I'll make a confession to you.
तो मैं आपको एक पाप देखना करूँ.
When I was young, I used to take drugs, I used to drink.
जब मैं युवा था तो मैं पीता था और कुछ नशीले पदार्थ भी लेता.
Well, when you are under the influence of those drugs, of that drink, you don't see things clearly.
तो जब आप उस नशा के प्रभाव में होते हैं तो आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता.
You can, even when you're drunk, you can't even put your bottle properly on the table.
तो अभी मैं पिया नहीं था इसलिए ऐसा नहीं करूंगा.
He does very very good imitation.
तो इस तरह से अपनी बॉटल भी आप ठीक से नहीं रख सकते.
Another time, he does a very, very good drunkard.
तो उसे कि ये बहुत पीने वाले आदमी का अच्छा रोल करते हैं.
But yes, you can't even move properly.
तो आप अपने आप को अपना शरीर भी ठीक से नहीं रख सकते.
You can't make sensible decisions.
तो आप कोई निर्णय भी ठीक से नहीं ले सकते.
You behave badly to other people.
दूसरे लोगों को के साथ आप बहुत बुरी तरह से व्यवहार करते हैं.
You destroy your life.
अपने स्वयं के जीवन को उध्वस्त करते हैं.
Of course, people drink because it makes you feel better.
अभी कुछ लोग इसलिए पीते हैं कि उनको जरा अच्छा लगता है.
When you've got troubles, you drink, the troubles go away.
जब आप परेशानी में होते हो, आप पीते हो, परेशानियां भाग जाती है.
Next day, you got a headache.
दूसरे दिन सरदर्द होता है.
Your pocket is empty.
जेब खाली हो जाता है.
And you don't know what you've done.
और आप ये नहीं याद नहीं है आपको कल आपने क्या किया.
And all your troubles are still there.
आपकी समस्याएं जैसी की वैसी तुम्हारे सामने.
They've got worse, in fact.
और एक तरह से वो समस्याएं और बिगड़ गई.
You need to face your troubles straight on.
हमारी जो भी समस्याएं हैं उनको सीधा सीधा सामना करना चाहिए.
And then you can deal with them.
और तब हम जाकर उस समस्याओं को सुलझा सकते हैं.
Well, I don't need to speak really about Baba Sahib in this way.
अभी इस तरह से बाबा साहब का उदाहरण लेना कोई आवश्यक नहीं है.
Baba Sahib never took drink or drugs.
बाबा साहब ने कभी भी किसी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं किया.
He was exceptionally mindful.
वो बहुत ही स्मृतिमान थे.
That's what this precept is really about.
और ये शील उसी के बारे में है.
स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ. So Baba Sahib exemplified that sort of mindfulness.
So Baba Sahib is aise smriti ke udaharan the.
I'll tell you an example from a very simple example.
Ek bahut hi sadharan udaharan main aapko batata hu.
He one day rang Nanak Chandratu.
Ek din unhone Nanak Chandratu ko phone kiya.
And he said, I want a particular book.
तो उन्होंने कहा कि मुझे एक किताब चाहिए.
With this title.
और ये उसका टाइटल है.
You go into my library.
आप मेरे लाइब्रेरी में जाओ.
And find it there.
और वहां पर उसको खोजो.
But Nanak Chandratu said, but Baba Sahib, You've got 9,000 books in your library. If I look for that book, it'll be 2 weeks before I find it. So Baba Sahib said, don't worry, go to the fourth shelf along, five shelves down, and it's the fourth book on the left. Baba Sahib knew where every book was. One day he blamed Nanak Chandra too because one book was missing from his table. He had a huge pile of books. But immediately he could see that one was missing. So he had that sort of mindfulness. He was aware of his environment. Baba Sahib was always mindful, awake. There's a story again where a French journalist came to Delhi to see various Indian political leaders. And he went to see, he came late at night, he had to leave the next morning. So he went to see Sardar Patel. He went to see Pandit Nehru. But when he went to their houses, everything was dark, they were asleep. And then he went to Baba Sahib's house. And there was Baba Sahib in his library reading. And he said to Baba Sahib, this is very strange. He said, you know, I go to these big leaders and they're asleep. I come to you and you're wide awake. And Baba Sahib said, I cannot sleep because my people are suffering. I must stay awake so that I can look after them. This was Baba Sahib's mindfulness. He was always aware of the sufferings of the multitudes of India. So this was Baba Sahib's keeping of the precepts.
तो ये है बाबा साहब के शीलों का आचरण.
We need to follow him.
और उनका अनुसरण हमें करना चाहिए.
We need to follow the Buddha.
हमें बुद्ध का अनुसरण करना.
We need to practice the precepts so that we can train ourselves for freedom.
तो हमें शीलों का आचरण करना चाहिए ताकि हम स्वयं को इस तरह से मुक्त होने के लिए प्रशिक्षण कर.
We need to practice the precepts so that we can work for the Dhamma, so that we can work for the uplift of the downtrodden masses.
तो हमें शीलों का आचरण करना चाहिए ताकि हम धम्म के लिए काम कर सके और जो भी पीड़ित शोषित लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए हम कोशिश करें.
And if we just practice the precepts more and more thoroughly, we will get stronger and stronger in the Dhamma.
तो अगर हम शीलों का और ज्यादा आचरण करते हैं तो धम्म में हम और ज्यादा मजबूत हो जाएंगे.
And we will experience more and more happiness.
और हम और ज्यादा सुख का अनुभव करेंगे.
Because Shila is the means to happiness.
क्योंकि शील जो है उसे सुख निर्माण होता है.
And we will spread happiness around us.
और हम हमारे चारों तरफ जो सुख है उसको भी फैलाएंगे.
So please think about these things.
तो कृपया इसके बारे में सोचिए.
Think about your own life.
अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचिए.
None of us are perfect.
हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है.
Every one of us can practice the precepts more fully.
हम में से हर एक और ज्यादा अच्छा शीलों का आचरण कर सकता है.
So see in what way you can practice the precepts more deeply.
तो आप देखिए, कोशिश करिए, सोचिए कि और गहराई से आप शील का आचरण कैसे कर सकते हैं.
Follow the example of Baba Sahib.
बाबा साहब के अनुसार आचरण करिए.
And you will live a good life for yourself.
आप स्वयं के लिए अच्छी जीवन जियोगे.
And you will live a good life for others.
और आप दूसरों के लिए अच्छा जीवन जियोगे.
नमो बुद्धाय. जय भीम.